हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वंशीधर प्रभु नहीं और मैं कहाँ आ गया। नहीं, वंशीधर प्रभु अभी आएंगे थोड़ी ही देर में। मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उस टाइम के बाद में वंशीधर प्रभु आ जाएंगे। सो हमारी आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम सब ने एक प्रभुपाद की बुक कंप्लीट कर ली है फाइनली, ऑन द वे टू कृष्णा। और ये सेशन के बाद उसकी एग्जाम दी जाएगी। मैं थोड़ा सा और एक बार रिव्यू दे देना चाहता हूँ जो हमारा जो कोर्स है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स है और लोग लेफ्ट भी हो रहे हैं, मुझे डाउट्स पूछे जा रहे हैं। तो मैं और एक बार स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है, जो नए लोग भी जुड़ना चाहते हैं, अगर अभी भी आपके पास एक चांस है। एक बुक हम कंप्लीट बाद में एट द नेक्स्ट बैच में करेंगे, और आप अगर अभी से जुड़ेंगे तो कल से जो हमारा सेकंड बुक, जो ये वाली जो सेकंड बुक है हमारी, ये मैचलेस गिफ्ट एंड, तो ये बुक हमारी जो नेक्स्ट बुक है हमारी द मैचलेस गिफ्ट, वो स्टार्ट होगी, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। सो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये जो कोर्स रहेगा वो सेल्फ स्टडी कोर्स है। सो प्लीज एक समझे, हम लोग रोज आपको टास्क दे रहे हैं, उसमें से आपको सेल्फ स्टडी करना है। और नॉर्मली आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि आज का टास्क है, नॉर्मल बेस पे बता दो, अगर गलती से भी मैं भूल गया या फिर मेरे टीममेट्स भूल गए लिखना कि क्या टास्क क्या है, तो एक चैप्टर जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। सो अगर हम एक दिन लिख रहे हैं कि ये हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट डे उसका हाफ पार्ट ही कंप्लीट होने वाला है, वो लॉजिकल है। सो वो आप पढ़ाई शुरू फटाफट कर सकते हो अपने आप, कि फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट डे तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वैसे कंटिन्यू होंगे। और इस बार जो लास्ट हमारे जो तो थोड़ा एक्सपीरियंस रहे, जो हमारा भी फर्स्ट टाइम है, सो थोड़े से हमारे बैड एक्सपीरियंस रहे लास्ट बुक में, तो वो उसको हमने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए फिर इस बार हमने क्या किया है कि जो सारे ऑडियोज रहेंगे सारे चैप्टर्स के, लास्ट बुक के भी सारे ऑडियोज रिकॉर्डेड है हमारे पास, जस्ट भेज नहीं पाया मैं, तो वो जो सारे ऑडियोज है वो हमने एक एंकर ऐप है, ANCHOR, एक एंकर ऐप है, उस पे हमने डाल दिए है सारे ऑडियोज। और वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो लिंक पे आप अपने आप भी सुन सकते हो, या फिर डेली वैसे तो लिंक भेजी जाएगी आपको, तो उस लिंक के थ्रू आप वहां पे भी सुन सकते हो जो एक एक चैप्टर के लेक्चर्स रहेंगे, वो आपको हेल्पिंग लेक्चर्स। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इस बार एक ऐप है कैनवा ऐप, वो प्लीज इंस्टॉल कीजिए, जो मैंने फर्स्ट डे भी आपको ये चीज बताई थी कि हम लोग जो फोटो एडिटिंग का सेशन करेंगे, तो वो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार से शुरू करें। तो किसी कैनवा ऐप है या पिक्सार्ट ऐप है, कोई भी आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और इस बार से हम लोग थोड़ा ये करेंगे, जो आपका टास्क जो रहेगा कि जो फोटो एडिटिंग का है, वो टास्क ऐसे रहेगा कि आपको जो पढ़ रहे हो उसमें से एक एक बेस्ट कोट प्रभुपाद का आपको ढूंढना है, और वो बेस्ट कोट को आपको कोई भी थीम, कैनवा ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऐप में सारे आपको थीम्स दिए गए, वो बहुत इजी ऐप है, उसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ थीम्स दिए ही गए, आपको सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर फोटो का फॉन्ट चेंज करना है या फिर जो आपको करना है वो आप हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो। तो वो बेसिक ऐप है, तो वो आप ऐप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, और उसमें आपको एक फोटो बनाना है जिसमें प्रभुपाद के कोट है, वो जो आप कोट डिसाइड करे वो, और नीचे श्रील प्रभुपाद और बुक का नेम, ये 3 चीज आपको डालनी है, और वो हम अपने प्रोफाइल जो गौरंगास ग्रुप का प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे हम लोग अपलोड करेंगे, और देखते हैं आपके फोटोज को कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, कितने टच होते हैं, और उसके हिसाब से हम फोटोज डालते रहेंगे, और जिसका बेस्ट टच और एग्जाम्पल फॉर इमेज मेरी। ओके ओके माता जी, मैं ऐसा तो गूगल शेयरिंग करूँ अभी करता हूँ, जैसे एक वो मैं सेशन रख दूंगा, उसका मैं सेशन या फिर वीडियो डाल दूंगा कैनवा के, तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, मैं पक्का उसका सेशन इन फ्यूचर डाल दूंगा। सो ये रही हमारी फर्स्ट बुक का, ये है कि हम लोग को आपका सेल्फ स्टडी है वो, और जो भी नए लोग भी जुड़ना चाहते हैं अभी, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो आप या फिर आपके फ्रेंड्स कलीग आपको अच्छा लग रहा है, और मैं प्रॉमिस, और आप सबको सॉरी बोल रहा हूँ कि लास्ट बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, वो इस बार नहीं होगा, और इस बार का जो क्विज भी रहेगा, मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्विज ओपन नहीं हो रहा है या फिर चल नहीं रहा है, तो इस बार का जो क्विज है वो 24 आवर्स तक ही रहता है, 24 आवर्स के बाद हम लोग बंद कर देते हैं उसे। So, अगर आप 24 आवर्स के बाद अगर क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो क्विज बाद में आपको नहीं खेल पाओ। और बाद में हम गूगल फॉर्म्स बनाते फॉर ओनली प्रैक्टिस, वो सिर्फ काउंट नहीं होंगे उसके मार्क्स, वो सिर्फ प्रैक्टिस परफॉर्मेंस के लिए होगा, तो आप वो क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, हम लोग डेली क्विज दे देंगे। इस बार हमने सोचा है कि टाइम शेड्यूल रहेगा, और टाइम भी नीचे हम मेंशन करेंगे, तो वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपका रहेगा। और होप आप सब नोट्स बना रहे हो और बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, डाउट्स हो तो डाउट्स भी पूछ सकते हो, अभी जो प्रभु जी का सेशन रहेगा उसमें डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो जिन जिन लोगों को अभी भी रजिस्टर करना है वो फॉर्म्स जो अवेलेबल है फॉर्म्स में रजिस्टर कर सकते हैं, और मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और मैं अभी प्रभु जी को बुलाऊंगा, जो प्रभु जी, हाँ, वंशधर प्रभु का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, वैसे तो आप सभी लोग जानते हो, और मैं क्या ही बताऊं, प्रभु जी वैसे भी हमारे YouTube चैनल के बेस हीरो और सब है, हमारी नॉट ओनली YouTube चैनल, हमारे पूरे इस्कॉन बड़ौदा के भी वो, या इस्कॉन यूथ फोरम के भी वो डायरेक्टर है, हेड है, तो उनको वैसे तो सभी जानते हैं, पर एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, वो NIT भोपाल से पास आउट है और मोर देन 15 ईयर्स से वो इस्कॉन को सर्व कर रहे हैं, और और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर रहे हैं, दाहोद, सूरत बेस, इस्कॉन बड़ौदा, और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है वहां पे वो प्रीचिंग सेंटर्स, वो यूथ काउंसिलर है, वो कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचर है, वो डायरेक्टर है, जो हमारे इस्कॉन बड़ौदा का ब्रह्मचारी है उसके भी वो हेड है। सो प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी जो हमारी जो लास्ट बुक हमने पढ़ ली है, तो वो उस बुक को वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे और हमें डीप में समझने, हमारे जो भी डाउट्स है वो डाउट्स को वो क्लियर कर पाए। सो नाउ वी वेलकम वंशीधर प्रभु बाय। हम लोग एक बार हाथ बोल के, सब जो वीडियोस ऑन है वो एक बार हाथ ऊपर करके प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय सेइंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। गुड नंबर 27 डिवोटीज, गुड। आप सभी लोगों ने पहला पुस्तक कंप्लीट किया उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने भी क्विज अटेंड किया, एक्चुअली क्विज जो है वो एनकरेजमेंट के लिए है, बट हमारा मेन मोटिव है कि आप प्रभुपाद के शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को पढ़ सकें, उसके ज्ञान को जीवन में अपना सकें। क्विज उसके लिए एक एनकरेजमेंट है, जिससे आपको जब भी कभी थोड़ा कंपटीशन होता है तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उसको ऐसे अटेंड करें, तो इसलिए एक क्विज रखा गया है। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि जैसे जैसे और भी बुक्स हम कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत इंक्रीज होगा, और साथ साथ आपको जीवन में शास्त्रों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में पता चलेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बताते थे, दीज बुक्स आर द लॉ बुक्स फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। तो एक पुस्तक पढ़ के भी आपको पता चल गया होगा अभी तक कि उसमें कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। कुछ कुछ लोग नए हैं जिनका इस्कॉन से पहली बार संबंध हुआ है, या पहली बार वो किसी इस प्रकार के कोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि 1965 में, 1922 में श्रील प्रभुपाद, जो कि बंगाल में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 1896 में, 1922 में उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था भगवद गीता का प्रचार पाश्चात्य देशों में करने के लिए। तो उसके बाद 1965 में जब वो 69 इयर्स के हो गए थे, उस समय वो मालवाहक जहाज से, पानी के जहाज से अमेरिका गए, बॉस्टन और फिर न्यूयॉर्क गए, और वहां जाके 70 साल की उम्र में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन संस्था की स्थापना की, और विद इन 10 साल उन्होंने पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की। तो भगवद गीता की जो फिलॉसफी है उसको ग्लोबल लेवल पे इतने सारे देशों में पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है। इसलिए इस्कॉन के लिए लोग कई बार सोचते हैं कि इस्कॉन में विदेशी लोग रहते हैं तो शायद विदेशी संस्था है, परंतु भारत के एक सन्यासी ने इसको प्रारंभ किया। क्योंकि भारत के लोग अमेरिका को इतना फॉलो करना चाहते हैं कि भारत के लोग भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे, जब अमेरिकन ने उसको स्वीकार किया तो फिर भारत के लोगों ने उसको स्वीकार किया, ये सोच के कि अमेरिका वाले कर रहे हैं मतलब अच्छी चीज होगी। ये भारत के एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत के लोग चीजों को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब वो अमेरिका से आते हैं। हमारे लिए अमेरिका जो है वो स्वर्ग लोक के जैसा लगता है, यूएस इज हेवन। जो लोग जिनको अमेरिका का वीजा मिल जाता है वो खुश हो जाते हैं कि अभी मुझे अमेरिका का वीजा मिल गया। जैसे एक पिज्जा इफेक्ट आपने देखा होगा, पिज्जा एक्चुअली क्या है, इटली में पहले बनाया जाता था, लेबर लोग उसको खाते थे। जब ब्रिटिश और अमेरिकन लोग वहां पे आए तो उस पिज्जा को ले जाके वो अमेरिका अमेरिका लेके गए, अमेरिका वो फेमस हो गया। तो जब वो इटली वापस आया तब तो वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाया जाने लगा। तो उसको पिज्जा इफेक्ट बोलते हैं कि वो जो लेबर के खाने वाली चीज थी वो अमेरिका से जब लौट के आई तो वो बहुत फेमस हो गई। तो भारत आध्यात्मिक ज्ञान एक्चुअली भारत का ही है, हमारा आध्यात्मिक धरोहर है, परंतु भारत के लोग उसको बहुत तुच्छ समझते थे। भारत के लोगों को लगता था, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज में कुछ ज्यादा है नहीं, केवल पैसा कमाना जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए अमेरिका स्वर्ग के जैसा रहता है।
इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला कि भारत के लोग तभी सुनेंगे जब पाश्चात्य लोग भक्त बनेंगे। तो प्रभुपाद जी उसके लिए अमेरिका गए, अमेरिका में संस्था की स्थापना की और अमेरिकन शिष्यों को भारत में लेके आए। और जब उन्होंने भारत के लोगों ने देखा कि अमेरिकन लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तब तो उन लोगों ने ज्यादा सिंसियरिटी से लिया। तो ये एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन था श्रील प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी की पुस्तकें, आपने एक पुस्तक पढ़ी है तो आपको अनुभव हुआ होगा कि कितने ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें दिया जा रहा है। हर जगह पे लॉजिक और शास्त्र को अप्लाई करने का बताया गया है। तो ये ज्ञान जो है कोई नया ज्ञान नहीं है। भारत जो ज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं ये भारत के वैदिक सभ्यता का ज्ञान है। वैदिक समाज में ये ज्ञान सभी को होता था। वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु के उपासक भारत में अनंत समय से चल रहे हैं, क्योंकि संसार जब बना था तो विष्णु जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था और फिर ब्रह्मा जी ने संसार को क्रिएट किया विष्णु जी के ज्ञान देने के बाद। तो ये वैष्णविज्म का जो सिद्धांत है ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, परंतु भारत में बहुत लंबे समय की मुगल लोगों की दासता और फिर अंग्रेजों के शासन के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण सामान्यतः ये सिद्धांत लोग भूल गए हैं, या सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, क्योंकि गुरुकुल कल्चर खत्म हो गया तो, और गुरुकुल में ये ज्ञान दिया जाता था, इस कारण से धीरे धीरे लोग जो ये ज्ञान जो लोगों ने सीखा तो वो केवल दादा पापा माँ इन सब की कहानियों से सीखा, वैदिक शास्त्रों से नहीं सीखा। अभी भी हम देख सकते हैं भारत में हिंदू लोग, कई हिंदू लोग रामायण महाभारत को केवल टीवी सीरियल देख के ही समझते हैं। उनको पूछो कि रामायण में कितने श्लोक हैं तो नहीं पता होता है, महाभारत में कितने श्लोक हैं तो नहीं पता होता है। तो ये हालत है क्योंकि हम वैदिक शास्त्रों से ज्यादा विश्वास करते हैं टीवी पे, और टीवी में जो दिखाई देता है हमें लगता है सही है, जबकि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, रामायण में 24 हजार श्लोक हैं। कभी हमने उसको नहीं सोचा कि हमें वास्तविकता में शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और टेलीविजन में क्या दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपनी टीआरपी भी बढ़ानी है और चैनल भी चलाना है, तो सारी चीजें सही नहीं होती हैं, परंतु हम उसी को सच मान के अपने वही कॉन्सेप्ट हम आगे कैरी करते रहते हैं। तो ये जो पहली पुस्तक थी जो ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर, ये पुस्तक हमें समझाती है, पांच पांच पार्ट हैं, पांच चैप्टर हैं इस पुस्तक के, और पांचों चैप्टर सीक्वेंस में आते हैं। पहला चैप्टर आता है सुख की खोज, थ्रू वे टू हैप्पीनेस, सुख का रास्ता। और दूसरा, पहले चैप्टर में जो थीम पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, आपने पढ़ा होगा तो आपको भी ये थीम समझ में आया होगा, थीम और सब थीम। तो मेन थीम जो फर्स्ट चैप्टर डील करता है उसमें कंपैरिजन किया गया है कि हैप्पीनेस क्या कहलाता है, सुख की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है। वास्तविकता में लोग सुख समझते हैं जब दुख कम हो जाते हैं तो सुख समझा जाता है। तो वास्तविक डेफिनेशन सुख की वैसे नहीं होती है। सुख का डेफिनेशन सामान्यतः जैसे पहला पैराग्राफ ही, बुक का जो पहला पैराग्राफ है वो बताता है कि हर व्यक्ति सुख की तलाश कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वास्तविक सुख क्या है। पूरे संसार में सुख के बारे में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं संसार में बहुत कम लोग सुखी हैं। और सुख ऐसा है कि लोगों को लगता है कि सुख मिलेगा परंतु मिलता नहीं, हमेशा उसकी आशा बनी रहती है, और जब मिलता है तो जितना हमने सोचा था उतना उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। तो भौतिक संसार का सुख जो है वो कल्पना में बहुत अच्छा लगता है, रियलिटी में वो सुख उतना ज्यादा फील नहीं होता है जितना हम सोचते हैं कि सुख मिलेगा। ये सच्चाई हम सभी जानते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड सुख हो, चाहे कोई भी चीज भोगने से रिलेटेड हो, परंतु तो कुछ समय के बाद हम ऊब जाते हैं। जैसे सुबह सुबह जब न्यूज पेपर आता है ना, तो कई बार घरों में लड़ाई हो जाती है कौन सबसे पहले पढ़ेगा, और वही न्यूज पेपर 2 घंटे के बाद इतना बासा हो जाता है कि कोई देखता भी नहीं है, फिर उसको कूड़े में फेंकने की इच्छा होती है। तो संसार का हर सुख इस प्रकार से है, जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है पर बहुत कम क्षण के लिए होता है। और साथ साथ इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिखाई दिया गया है कि संसार का जो सुख है, व्यक्ति जिसकी जितनी चेतना होती है उसके आधार पर उस सुख को परसीव कर पाता है। जिसकी चेतना ज्यादा ऊंची होती है उसको सुख या दुख ज्यादा इंटेंसली फील होते हैं। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं स्टोन के द्वारा, कि पत्थर पत्थर में इस प्रकार से कम चेतना होती है इसलिए पत्थर को कुछ फील भी नहीं होता है, और मनुष्यों और पशुओं में ज्यादा चेतना होती है इसलिए उनको ज्यादा फील होता है। तो वृक्षों में भी चेतना पाई जाती है परंतु डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वृक्ष अगर हर हर वेदर में, हर वातावरण में खड़े रहते हैं, बरसात, गर्मी, ठंड में। परंतु अगर हमसे बोल दिया जाए कि आपको 2 घंटे बस धूप में खड़ा रहना है, तो हमें कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी चेतना डेवलप्ड है। और साथ साथ इस संसार में जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो सुख वास्तविकता में सुख, वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख हमारे शरीर के लिए है और हम शरीर है नहीं। आगे आगे के अध्यायों में आता है इस प्रकार से। तो अलग अलग डिग्री की हैप्पीनेस है। भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक सुख जो होता है वो सुख क्या कहलाता है, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। उस सुख का मतलब होता है कि ऐसा सुख जो कि इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो दिव्य सुख होता है, आध्यात्मिक सुख होता है। और वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्च चलति तत्त्वतः। जब किसी व्यक्ति को वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, तब व्यक्ति उस रास्ते से कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाता है। जैसे सिंपल उदाहरण है, कभी भूख लगती है तो अगर सूखी रोटी देते हैं, और सूखी रोटी के कंपेरिजन में हमें कोई फीस्ट देते हैं, तो नेचुरली सूखी रोटी कोई नहीं खाएगा, फीस्ट को खाएगा। इसी तरह से जब आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को मिलता है, तब वो फिर भौतिक सुख के पीछे भागता नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को बुद्धि इतना होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि वास्तविक सुख क्या है। क्योंकि पशुओं में इतना कोई डेवलप्ड इंटेलिजेंस नहीं होता है, इसलिए वो मनुष्य जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं। और अगर हम सुख का भी देखें, तो वास्तविकता में बॉडी का कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है। बॉडी के अंदर जो आत्मा है, वो वास्तविकता में बॉडी के थ्रू एंजॉय करती है। हो सकता है हम सोचे कि हम एंजॉय कर रहे हैं, परंतु वास्तविक एंजॉय आत्मा है। इसको कैसे समझा जा सकता है कि जब आत्मा शरीर से चली जाती है, तो उसको शरीर को चाहे गुलाब जामुन खिलाओ, चाहे कुछ भी करो, शरीर कुछ कार्य नहीं करता, क्योंकि उसकी चेतना जा चुकी है। आत्मा और चेतना जा चुकी है, तो शरीर फिर कोई एंजॉय नहीं कर पाता है। वही व्यक्ति जो 70-80 साल तक एंजॉय कर रहा था, वो शरीर जाने के बाद कोई एंजॉयमेंट नहीं कर पाता है। इससे पता चलता है कि वास्तविक एंजॉयर जो है, वो आत्मा आत्मा है, शरीर नहीं है। हो सकता हमें वो पता नहीं हो, परंतु हम सभी आत्मा हैं, और ये समझना बहुत कठिन नहीं है। लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि आई एम द सोल, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई लेग, दिस इज माई हैंड, तो इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि आई और माई दो अलग अलग शब्द होते हैं। आई का मतलब मैं और माई का मतलब मेरा। तो माई हैंड मतलब आई एम नॉट हैंड, ये मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मैं इस हाथ से अलग हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं वास्तविकता में आत्मा हूं। ये भगवद गीता का पहला सिद्धांत होता है। और अगली बार अगला इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आत्मा एंजॉय कर रही है, तो आत्मा की इंद्रियां भी होनी चाहिए। एंजॉयमेंट इंद्रियां होंगी तभी व्यक्ति एंजॉय करेगा। तो वास्तविकता में एक्चुअल एंजॉयमेंट आत्मा का होता है, और आत्मा की इंद्रियां भी होती हैं। और आत्मा की इंद्रियों को अगर हम देखेंगे, तो आत्मा में इंद्रियां क्यों होती हैं, क्योंकि भगवान में इंद्रियां हैं, और आत्मा भगवान का एक अंश स्वरूप है, इसलिए आत्मा के अंदर भी इंद्रियां पाई जाती हैं। और इसमें एक उदाहरण दिया है पहले अध्याय में, कि अगर हम कोई ड्रेस पहनते हैं या सूट पहनते हैं, तो वो ड्रेस या सूट बॉडी को फिट होता है। तो वास्तविकता में उस ड्रेस का कोई अपना आकार नहीं, बॉडी के आधार पर फिट होता है। इसी तरीके से ये जो शरीर का ड्रेस है, ये आत्मा का आकार है, आत्मा के आधार पर वो फिट होता है। तो आत्मा इस संसार में एक सूक्ष्म रूप में होती है, जब आध्यात्मिक संसार में जाते हैं, वहां पर वास्तविक आत्मा का रूप आता है। तो ये पहले अध्याय में दिया गया है। और भी आगे उसमें दिया है कि वास्तविक हैप्पीनेस जो है, वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस है। ऐसी हैप्पीनेस जो कि कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शरीर से संबंधित जो वस्तु होती है वो खत्म हो जाती है, परंतु शरीर के अलावा जो आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक सुख होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। भगवद गीता बताती है कि आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो आत्मा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका भी विनाश नहीं होता है। इसलिए वास्तविक सुख जो है, वो आध्यात्मिक सुख है, कृष्ण भक्ति का सुख है। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, उतना उतना हम संसार की वस्तुओं से डिटैच हो जाते हैं। इसके लिए अब 6वें अध्याय का श्लोक 5 श्लोक आता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। ऐसे आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को और कुछ सुख प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता है। और ऐसी अवस्था में फिर वो इससे अधिक और कुछ नहीं सोचता है, किसी भी दुख में वो विचलित नहीं होता है। तो ये कृष्ण भक्ति का जब बात आता है तो कुछ लोगों को प्रश्न होता है कि क्यों कृष्ण का नाम ले रहे हैं बार बार। कुछ लोग इस तरह से, एक्चुअली कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप इस्कॉन वाले हो इसलिए आप लोग कृष्ण को प्रमोट करते हो, कृष्ण तो अभी 5 हजार साल पहले आए, बाकी तो उसके पहले तो कृष्ण थे नहीं, तो आप तो क्यों प्रमोट करते हो, आप जबरदस्ती प्रमोट करते हो। उनसे मैं सिंपल प्रश्न पूछता हूँ कि सूर्य जब सुबह होता है, सुबह जब सूरज का उदय होता है, क्या उसका ये मतलब होता है कि सूरज उसके पहले था ही नहीं कभी? इसका ये सूरज का सुबह उदय हो रहा है उसका ये मतलब नहीं कि सूरज का अभी जन्म हुआ है। इसी तरह से कृष्ण अगर 5 हजार साल पहले आए थे उसका ये मतलब नहीं कि 5 हजार साल पहले उनका जन्म हुआ था। सूरज पहले पिछले दिन भी आया था, पिछले दिन भी दोपहर हुआ था, शाम हुआ था, फिर डूबा था, अगले दिन फिर सुबह होगा, कल फिर से सुबह होगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरीके से भगवान हर बार द्वापर युग में भगवान का अवतार होता है, हर त्रेता युग में राम का अवतार होता है, हर द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होता है। तो अवतार का मतलब ये नहीं होता है कि उनका जन्म होता है। आध्यात्मिक संसार में हमेशा भगवान स्थित होते हैं, भौतिक संसार में वो इस आते हैं जब भी समय आता है। भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं कि मैंने ही ये ज्ञान करोड़ों साल पहले सूर्य देव को दिया था। यशराज प्रभु ने लिखा भी है भगवद गीता 4वें अध्याय में पहला श्लोक है कि एमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मन विप्राह मनो इच्छा कवे भी। थैंक यू प्रभु रेफरेंस देने के लिए। तो भगवान बताते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्य देवता विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनु को ये ज्ञान दिया। मनु मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे और इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का अवतरण हुआ था। दैट मीन्स भगवद गीता इतनी पुरानी है कि भगवान राम ने भी उसका अध्ययन किया हुआ है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण अभी के हैं और गीता 5 हजार साल पुरानी है? यह हमारी अज्ञानता है या हमें किसी ने उस तरह से बताया नहीं है। भगवान और उनके अवतार हमेशा आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और जब समय आता है तब धरती पे आते हैं। तो अवतार का मतलब जन्म लेना नहीं होता है, अवतार का मतलब उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे सूरज उदय होता है फिर अस्त होता है और फिर उदय होता है फिर अस्त होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि कृष्ण अलग है विष्णु अलग है। ये इस तरह से है जैसे किसी व्यक्ति का नाम घर में विवेक है, नहीं बाहर उसका नाम विवेक है, अंदर उस व्यक्ति का नाम कन्नू है या कन्हैया है, और उसके फ्रेंड उसको हो सकता है लकी बुलाए, तो क्या हम ये बोलेंगे कि विवेक कन्हैया और लकी अलग अलग व्यक्ति हैं? कोई व्यक्ति अगर बोलेगा दैट मीन्स वो समझता नहीं है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ठीक से जानता नहीं है। अगर एक व्यक्ति अलग अलग ड्रेस में आए या अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाए तो वो व्यक्ति अलग नहीं हो जाता। इसी तरह से जब भगवान संसार को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो विष्णु के रूप में मैनेजमेंट करते हैं, जब लीलाएं करते हैं तो कृष्ण के रूप में मैनेजमेंट करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि अलग अलग व्यक्ति हो गया। उसको ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान जब ऑफिस में रहते हैं तो विष्णु के रूप में काम करते हैं और जब घर जाते हैं फैमिली के साथ रहते हैं तो कृष्ण के जैसे कार्य करते हैं। जैसे आप जब कभी फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आप ऑफिशियल काम नहीं करते, फिर बच्चे के साथ खेलते भी हैं, हो सकता है बच्चा आप एक गाड़ी के जैसा बने और आपका छोटा बच्चा आपकी पीठ पे बैठ के घूमे, तो वो काम आप ऑफिस में नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस में आपका मूड अलग है, मैनेजमेंट का मूड है। तो इसी तरह से भगवान जब ऑफिस में रहते हैं, संसार को मैनेज करते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, तो विष्णु के रूप में मैनेज करते हैं, और जब वो लीलाएं करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मित्रों के साथ घूमते हैं, गाय चराते हैं, तो कृष्ण के रूप में करते हैं। तो केवल रस अलग है, उस व्यक्ति को अलग नहीं माना जाता। वैष्णव सिद्धांत में कभी ये नहीं बोला जाता कि कृष्ण छोटे हैं विष्णु बड़े, कृष्ण बड़े हैं विष्णु छोटे हैं, या विष्णु बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। समान व्यक्ति को रस के आधार पे अलग अलग भक्त अलग तरीके से पूजा करते हैं। वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तो राम के रूप में पूजे जाते हैं, और कृष्ण के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में संसार में उपस्थित रहते हैं। तो ये अवस्था व्यक्ति को समझना चाहिए कि सिद्धांत ठीक तरीके से समझे, कि अननेसेसरी इस प्रकार का कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भगवान कृष्ण की सुपीरियरिटी की बात आती है तो केवल रस के आधार पर आती है कि किस प्रकार से लोग उनसे संबंध, प्रेम का संबंध ज्यादा बना सकते हैं। जैसे वैकुंठ लोक में आप देखें तो नारायण से कोई प्रेम का संबंध इस तरह से नहीं बना सकते हैं कि नारायण से कोई मित्र के जैसा बात करे या नारायण को कोई डांट दे, आई बोल नारायण को कोई डांट दे या विष्णु जी को कोई डांट दे, इस प्रकार से वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे भगवान एक मालिक है और सभी लोग उनके सेवक के समान है। परंतु भगवान राम का जो रूप है वो उससे ज्यादा अप्रोचेबल है, क्योंकि भगवान भगवान राम के मित्र भी होते हैं। जैसे वैकुंठ में भगवान विष्णु के कोई मित्र नहीं है, सभी उनके दास हैं, परंतु भगवान राम के अवतार में उनके मित्र भी हैं, उनके सखा भी हैं, तो ज्यादा अच्छे से संबंध स्थापित हो सकता है, प्रेम का संबंध स्थापित हो सकता है। और भगवान राम अपना महल छोड़ के जंगल में जाते हैं साधुओं को भी अपना संग देने के लिए, तो इस कारण से उनके रस को ऊपर माना जाता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण के साथ और ज्यादा अच्छा संबंध स्थापित हो सकता है, उनके मित्र होते हैं जो उनको अपना जूठन भी खिलाते हैं, भगवान के कंधे पर चढ़ के बैठ जाते हैं, तो वो प्रेम का संबंध और ज्यादा इंटेंस होता है। तो इस कारण से उनकी भक्ति में बहुत सारे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के रस को ऊंचा माना जाता है। बाकी पर्सनालिटी के आधार पे, तत्व के आधार पे सभी बराबर है, परंतु हम कैसे उनसे प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके आधार पे माना जाता है। तो भगवान विष्णु की सेवा में केवल दास्य भाव होता है, भगवान राम की सेवा में दास्य भाव भी होता है, साख्य भाव भी होता है, और भगवान कृष्ण की सेवा में दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब सारे के सारे रस पाए जाते हैं। तो वो सिद्धांत है जो कि कृष्ण भक्ति का सिद्धांत माना जाता है, और ये सिद्धांत भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, विष्णु पुराण, पद्म पुराण सभी में ये सिद्धांत दिया है। तो जब इस प्रकार से शास्त्रों को हम सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते हैं या प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुनते हैं, तब हम भगवान के अलग अलग रूपों में ही लड़ाई करने लगते हैं कि इस्कॉन वाले कृष्ण का बोलते हैं, विष्णु का नहीं बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ शास्त्र नहीं बताते हैं, केवल हमारे दिमाग की उपज है, हमने उसको ठीक से सीखा नहीं है या हमें प्रामाणिक शिक्षक ने सिखाया नहीं है, इसलिए वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बहुत एडवांस होता है तो बाकी सब चीजें, बाकी सारे अचीवमेंट उसको इनसिग्निफिकेंट लगने लगते हैं। तो कृष्ण भक्ति या भगवान विष्णु की भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि उसका छोटा सा भी टेस्ट मिलता है तो व्यक्ति संसार के सबसे बड़े दुख, डेंजर, सबसे बड़े डेंजर से बच जाता है। और इस संसार को तुलना की जाती है एक समुद्र से, जैसे समुद्र में अगर हम जाएं तो हमेशा समुद्र में बहुत तेज लहरें आती हैं, इसी तरह से इस संसार में हमेशा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब दुख मिलते रहते हैं, और कृष्ण भक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तभी हम इन दुखों को दिव्य रूप में आगे पहुंच सकते हैं। ये पहले अध्याय में दिया था कि ऐसे वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं, और फिर दूसरा अध्याय उसके आगे का सीक्वेंस को बताता है कि कृष्ण को जानेंगे, और उसको जानने का तरीका है, जैसे कृष्ण की भक्ति वास्तविक सुख है तो अभी कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे, उसके लिए कृष्ण को जानना होगा, और कृष्ण को जानेंगे कैसे, कृष्ण को जानने के लिए उनके नामों का जप करना होगा जो कि शास्त्रों में डिस्कस किया गया है। इसलिए सेकंड चैप्टर जो है वो बताता है किस प्रकार से नाम जप करें और किस प्रकार से कृष्ण को पहचाने। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक दिव्य मंत्र है जिसके द्वारा हम सभी का शीशा, जैसे आप मिरर की सफाई करते हैं तो देखेंगे मिरर में जितनी ज्यादा डस्ट होती है, जितनी धूल होती है, उतना कम उसमें हम देख पाते हैं। तो इसीलिए मिरर में अगर हम डस्ट हटा देंगे तो हम अपने आप को अच्छे से देख पाएंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना इसी प्रकार से उस मन का जो मिरर है उसमें से डस्ट को हटाने के समान है। अभी बहुत सारी डस्ट हमारे हृदय में, मन में जमी हुई है, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इतने सारे जन्मों से हमने पाप किए हैं कि वो सारी डस्ट हमारे हृदय में जमी हुई है। तो भगवान का नाम जब हम लेते हैं तब वो डस्ट धीरे धीरे साफ होती है, तब हमें पता चलता है कि हम वास्तविकता में आत्मा है। अभी तो हम यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं, सोच ही नहीं पाते कि हम आत्मा है। जब हम नाम का जप करते हैं तब धीरे धीरे हम रियलाइज करते हैं कि हम आत्मा है। इसलिए नाम का जप करने के लिए, इसलिए नाम का जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे भगवान हमेशा अवतार लेते हैं इस संसार में, तो कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। तो कलयुग में जो भगवान का अवतार है वो भगवान के नाम के रूप में माना जाता है, और भगवान का नाम जो है वो संसार का सबसे बड़ा धर्म भी माना जाता है। यहाँ भी धर्म का मीनिंग हमें देखना होगा कि धर्म का मीनिंग इस तरह से नहीं होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है एक्चुअली, ये तो केवल फेथ, विश्वास बोला जाता है। धर्म का एक मीनिंग होता है कि कोई ऐसी वस्तु किसी वस्तु का ऐसा नेचर जो उससे अलग नहीं किया जा सके। जैसे आग का नेचर होता है आग, लाइट, हवा, लाइट प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना और हीट, गर्मी प्रदान करना। इसी तरह से शक्कर का नेचर होता है मीठा होना, पानी का नेचर होता है लिक्विड होना, स्टीम का नेचर होता है मॉइस्चर होना। तो ऐसे ऐसा गुण जो उस वस्तु के साथ हमेशा रहता है उसको धर्म बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम आत्मा है तो हम सभी का एक गुण है जो हम सभी के पास है। हम हमेशा किसी को प्रेम करना चाहते हैं, किसी को सेवा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अगर वो कुछ उसको प्रेम और सेवा करने के लिए कोई नहीं मिलता तो वो कुत्ते को लेता है और कुत्ते की सेवा करता है। तो ये प्रेम और सेवा हमारा लक्षण है और उसके बिना हम नहीं जीवित हो सकते, जीवित रह सकते हैं, संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जब आत्मा भगवान की सेवा करती है तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि शारीरिक कोई भी सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। शारीरिक सेवाएं हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, परंतु आत्मा अगर भगवान की सेवा करेगी तो आत्मा संतुष्ट हो सकती है। और संतुष्ट सेवा करना हमारा लक्ष्य ही है। जब हम सेवा करना लक्ष्य बोलते हैं तो लोग कई बार ऑफेंड हो जाते हैं। लोग बोलते हैं नहीं मैं तो जॉब करता हूँ। उनसे पूछना चाहिए जॉब को इंग्लिश में बोल, जॉब को हिंदी में बोलते हैं नौकरी, और जो नौकरी करता है वो नौकर कहलाता है। तो उसी को थोड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों में बोलते हैं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, परंतु वो सिंपल चीज है, नौकर है। नौकर किसके हैं? कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी का नौकर है, कोई व्यक्ति अनिल अंबानी का नौकर है, कोई व्यक्ति बिल गेट्स का नौकर है, परंतु सभी लोग नौकर हैं। तो भगवत गीता ये प्रश्न पूछता है कि अगर नौकरी करनी है तो कृष्ण की नौकरी करनी चाहिए। मुकेश और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से तो कई गुना अच्छे हैं भगवान कृष्ण। तो आत्मा वास्तविकता में कृष्ण का दास है, परंतु जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करना भूल जाते हैं तो हम इस संसार में अलग अलग जगह पर सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा जब हम अगर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान की सेवा किस प्रकार से करना है तो उसके लिए हम नाम का जप करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण और उनकी सेवा में कितनी ज्यादा प्रसन्नता होती है, वास्तविकता में वो हमारा धर्म है। अभी इसमें एक प्रश्न आया था कि एक जगह पे आता है इस चैप्टर में कि आध्यात्मिक संसार में सेवक और मालिक में कोई अंतर नहीं होता है। भौतिक संसार में अंतर हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक संसार में सेवक और मालिक में कोई अंतर नहीं होता। वो इस सेंस में बोला गया है कि दोनों का नेचर सेम होता है। जैसे भौतिक संसार में ऐसा कभी नहीं होगा कि मालिक जो है वो नौकर की सेवा करे, परंतु आध्यात्मिक संसार में हम देखते हैं कि यद्यपि सभी लोग भगवान के दास हैं, परंतु भगवान अर्जुन के नौकर बन गए थे। आपको महाभारत में याद होगा भगवान ने अर्जुन के घोड़े को चलाया था। तो ऐसा नहीं कि भगवान दास बन जाते हैं, परंतु प्रेममयी जो सेवा होती है तो उसमें कई बार भगवान भी अपने अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और ये चीज हम इस संसार में भी देखते हैं कि हालांकि हालांकि पुत्र छोटा होता है, पिता और माता बड़े होते हैं, परंतु कई बार पिता अपने पुत्र की सेवा करता है। पिता गाड़ी बन जाता है, पुत्र उसके ऊपर बैठ के घूमता है। चाहे पिता अपने हाथ और पैर नीचे करके गाड़ी बन जाता है, पुत्र उसके ऊपर बैठता है। तो ये प्रेम के संबंध के कारण कई बार भगवान भी अपने भक्तों के सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो नेचर भौतिक संसार में नहीं दिखाई देता है। भौतिक संसार में हमेशा मालिक ऊपर होता है और सेवक को एक्सप्लॉइट करता है, सेवक को मालिक डोमिनेट करता है। परंतु आध्यात्मिक संसार में मालिक भी सेवक की सेवा करता है और सेवक मालिक की सेवा करता है। तो उस सेंस में लिखा है कि इस आध्यात्मिक संसार में इसका डिफरेंस नहीं होता है, दोनों आध्यात्मिक रूप से समान होते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है कि भक्त जो है भगवान बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो बात का सेंटेंस, बात का मीनिंग है वो यही मीनिंग है कि प्रेम के संबंध के कारण दोनों एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। तो ये सेकेंड चैप्टर बताता है और भगवान बताते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई भक्ति में लगा रहता है तो चाहे वो कितना भी उसने पाप के कार्य किए हों, परंतु भक्ति की शक्ति से वो व्यक्ति पाप के कार्यों से बाहर निकल सकता है और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि किस प्रकार से, जस्ट मिनट, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं। सेकंड चैप्टर जो था नो चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। तो जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो एक अवस्था आती है जब हम भगवान कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र तो सर्वम च मई पश्यति, जो व्यक्ति हमेशा मुझे देखता है और मैं हमेशा उसको देख, हर चीज को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी उसकी दृष्टि से दूर नहीं होता। और किस प्रकार से भगवान को हर जगह देख सकते हैं, कृष्ण भक्ति का ये मतलब नहीं कि हमें अपनी क्रियाओं को रोक देना है, अपने कर्तव्यों को रोक देना है, हमें अपने कर्तव्यों को भगवान को दे, भगवान को समर्पण करना है, उसको कर्म योग बोला जाता है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ क्रियाकलाप है, परंतु किस चेतना से वो करता है वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। से कोई व्यक्ति भोजन लेता है, परंतु जब भक्त जो भोजन लेते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो ये भक्ति में आ जाता है। सामान्यतः लोग पैसा कमाते हैं केवल भोग करने के लिए, इंद्रिय भोग करते हैं, पाप के कार्य करते हैं, परंतु भक्त जो पैसा कमाता है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा वो भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान की भक्ति के प्रचार में लगाता है, तो उसका जो क्रियाकलाप है वो भगवान से संबंधित हो जाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति जानता है अपनी चेतना को इस प्रकार से डेवलप करता है कि भगवान कृष्ण इस संसार के मालिक हैं और भगवान की शक्तियों से सारा संसार चल रहा है, हर वस्तु में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, फिर वो व्यक्ति भगवान को हर जगह देख सकता है और हर चीज में भगवान का कनेक्शन देख सकता है। वो कॉन्सियसनेस डेवलप करना इतना आसान बात नहीं है, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दिन में उस कॉन्सियसनेस को डेवलप कर सकते हैं, परंतु अगर हम नाम का जप करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब हम हर जगह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन नहीं, जैसा हम ऑफलाइन बात करते हैं एक दूसरे के सामने बैठ के, उस तरह हम भगवान से भी बात कर सकते हैं आमने सामने बैठ के। ये शास्त्र हमें क्लियरली वो बताते हैं। और इसके आगे आता है कि 6 प्रकार के जो इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें काम भावना जो है वो डिनोट करती है भोग की इच्छा को। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि हमें केवल भोग के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, हमें सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। जब भी हम कार्य करें उसके फल को भगवान को संतुष्ट करें। जैसे अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे, किस लिए? अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए, परंतु भगवान ने बोला कि यह धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना होगा, अपने कर्तव्य को करना होगा, और मैं इसको चाहता हूँ इसलिए करना होगा। तो व्यक्ति को अपने क्रियाकलापों को बदलना नहीं है, परंतु उसको भगवान के लिए उपयोग करना है, चेतना को बदलना है। क्रियाओं को बदलने की आवश्यकता नहीं, चेतना को बदलना है। ऑब्वियसली हम ये नहीं बोलते कि व्यक्ति पाप कर रहा है तो पाप करता रहे। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्लॉटर हाउस में है और मार रहा है, गायों को मार रहा है या मांस मांस खा रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मांस खाता रहे। नहीं, पाप के कामों को बंद करना होगा। अगर आप पाप की क्रियाओं को कर रहे हैं तो उसको बंद करना होगा। मांसाहार, जुआ और यौनाचार, ये सब अगर कर रहे हैं तो उसको बंद करना होगा। और उसके अलावा जो हम सामान्य कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करना होगा, तब कृष्ण भक्ति हो जाती है। ये समझते हुए कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ये हम नहीं करते इसलिए हम इस संसार में स्ट्रगल करते हैं, और ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान प्रोसेस दिया है। नाम का जप करना, श्रवणम और कीर्तनम, ये नाम का जप करना प्रोसेस दिया है। जो इसको पालन करते हैं वो उत्तम रास्ते में जाते हैं, जो इसको पालन नहीं करते हैं वो नरक की तरफ जाते हैं। इसलिए 4th अध्याय जो है वो डिस्क्राइब करता है कि बुद्धिमान लोगों का रास्ता क्या है और मूर्ख लोगों का रास्ता क्या है। इसका नाम ही इस प्रकार से है कि रोड्स ऑफ द फूलिश एंड द वाइज, इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को पालन करते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमत्ता की तरफ जाते हैं, जो पालन नहीं करते हैं, भगवान बता रहे हैं इसमें, दैवी है सगुणमय, इस संसार की जो माया शक्ति है बहुत कठिन है, उसको पार पाना बहुत कठिन है, और जो मेरे आश्रय लेते हैं वो इसको पार कर पाते हैं। और उसको पार करने के लिए भगवान ने सिस्टमेटिक सिस्टम भी प्रदान किए हैं कि इस प्रकार से इस संसार में रह के हम अपनी क्रियाओं को भगवान से संबंधित कर सकते हैं। और चूंकि हमारा और भगवान के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, हो सकता है अभी हम उस संबंध को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, परंतु वो संबंध हमेशा है। जब हम रियलाइज करेंगे और जब प्रोसेस में अपने आप को अप्लाई करेंगे तो फिर वो रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप एटर्नल रिलेशनशिप। इसलिए भगवान को समर्पण करना जो है वो जीवन का मुख्य लक्ष्य है। भगवान बताते भी हैं कि किस प्रकार के लोग उनके पास आते हैं। चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कुछ पैसे के लिए आते हैं, कुछ दुखी होते हैं और कुछ ज्ञानी होते हैं। और सभी लोग अपने आप में सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के पास आते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के पास आते हैं एटलीस्ट वो इतना प्रयास करते हैं कि कैसे वो वास्तविक रास्ते की तरफ जा सके, तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। परंतु इसमें से जो ज्ञानी होते हैं या जो भगवान के पास जाके कुछ नहीं मांगते हैं, जैसे सामान्यतः लोग भगवान के पास केवल तभी जाते हैं जब उनको एग्जाम में पास होना है या कुछ मिस्टेक हो गई तो कुछ दुख का समय आया तो भगवान के पास जाते हैं, तो वो भी अच्छा है। परंतु सबसे अच्छा है भगवान के पास जाके ये मांगना कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करिए, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके हृदय के अंदर स्थित होके उसके अज्ञान के अंधकार को खत्म करके उसको ज्ञान की अग्नि प्रदान करते हैं। और इसके बाद आता है कि बहुत सारे लोगों की भगवान की अलग अलग डेफिनेशन होती है। कुछ लोग किसी व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को भगवान बनाते हैं, कुछ फिल्मी लोगों को भगवान बनाते हैं। परंतु हमें समझना होगा कि भगवान कोई इस प्रकार के छोटी मोटी चीज नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम इस संसार के क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना की है, और उनको समझना ही जीवन का लक्ष्य है। और उनको समझने के लिए भगवान इसी कंटिन्यूएशन में बताते हैं, ये सातवें अध्याय का सीक्वेंस चल रहा है, इसी कंटिन्यूएशन में बताते हैं कि ये सभी लोग जो मेरे पास आते हैं उन सभी में सबसे अच्छा है ज्ञानी, क्योंकि वो केवल मेरी दिव्य सेवा में लगा रहता है और ऐसे दिव्य सेवा में लग के वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान क्लियरली यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के पास जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग वेलकम हैं, परंतु उन सब में जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके भगवान का भक्त बन जाता है। तो हमें भगवान की सेवा के चार स्तर होते हैं। एक स्तर तो होता है फियर, पहला स्तर होता है फियर, जब लोग बोलते हैं कि ऐसा करो नहीं तो दंड मिलेगा, तो लोग डर के कारण पूजा करते हैं, परंतु ये कोई अच्छा स्तर नहीं है। जैसे बचपन में माँ भी बच्चे को डराती है कि बेटा तुम ये करो नहीं तो बाबा बाबा आ जाएगा पकड़ के ले जाएगा, तो बेटा कर लेता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे नीचा स्तर है वो। उसके ऊपर एक स्तर होता है, उस स्तर का नाम होता है डिजायर। हमारी इच्छाएं होती हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं। ये होता है दूसरा स्तर, फियर, फिर डिजायर। डिजायर जो है वो फियर से थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद आता है ड्यूटी, जब व्यक्ति समझता है कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया तो हमें भगवान के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, तो वो तीसरा स्तर होता है। उससे भी ऊपर होता है एक स्तर, भगवत प्रेम का स्तर, जब हम समझते हैं कि भगवान हम हमारा भगवान का संबंध इस तरह से है कि हम सेवक हैं और हम उनकी सेवा करेंगे, तब फिर हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। और ये नॉलेज एक्चुअली शास्त्रों में हमेशा दिया गया है। प्रहलाद जो 5 साल के बच्चे थे उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की। ध्रुव महाराज जो कि छोटे से बच्चे थे, केवल जिद के कारण जंगल गए थे, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। हनुमान जी, मनुष्य तो अलग बात है, कई बार एनिमल्स ने भी प्राप्त किया। हनुमान जी जो वास्तविकता में वानर प्रजाति के हैं, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। जाम्बवान, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। वृंदावन की गाय है, वो भगवान को प्रेम कर सकती है। तो सभी व्यक्ति का साथ भगवान सभी के साथ भगवान का संबंध है, और केवल हमें उस संबंध को रिवाइव करना है। जैसे जैसे हम उसको रिवाइव करते हैं वैसे वैसे हम उस संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें दिया है। और इसके लिए भगवान फिर इस 5वें चैप्टर के लास्ट में बताया जाता है कि भगवान का नाम केवल अगर करते हैं, 3 बार बोला गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल अगर भगवान का नाम किया जाता है तो कलयुग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये पुस्तक जो है ये सार स्वरूप में ये बताती है, प्रारंभ में चालू करके बताती है कि कैसे सुख प्राप्त करना है, क्या वास्तविक सुख नहीं है और क्या वास्तविक सुख है। और सुख प्राप्त करने का स्टेप जो है, पहला स्टेप है नाम का जप करना, और नाम का जप करके जब शुद्धि प्राप्त होती है तो हम भगवान के साथ संबंध को रिवाइव कर सकते हैं, और जो इस प्रोसेस में नहीं रहते हैं वो फिर हमेशा रिस्क की अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा पाप की अवस्था में रहते हैं, और इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है आपकी, जो नेक्स्ट बुक चालू होगी, मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार पुस्तक होगी। तो वो पुस्तक भी इसका जस्ट सीक्वेंस है, पढ़ेंगे तो कई चीजें कौन मिलेंगी। ये कुछ कुछ पुस्तक सीक्वेंशियल हैं, इनको पढ़ने से हमें क्लियर होता है कि कैसे करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है हर्षल शाह प्रभु का, व्हाट इज कॉन्सियसनेस? कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना। कॉन्सियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। अगर आत्मा कहीं पे है तो, अगर चेतना कहीं पे है तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा उसके अंदर है। जैसे वृक्ष में चेतना है, कैसे पता चलता है? वृक्ष बढ़ते भी हैं, उसमें फल पैदा होता है, वृक्ष को काटो तो उसमें से रस निकलता है, वृक्ष खत्म भी होते हैं। तो वृक्ष के अंदर चेतना पाई जाती है, दैट मीन्स उसके अंदर आत्मा है। पहले लोग सोचते थे कि वृक्ष के अंदर आत्मा नहीं है, परंतु जगदीश चंद्र बोस ने पता किया, जेसी बोस ने सीस्मोग्राफ गन वो बनाया, उससे पता चला कि वृक्षों में भी आत्मा पाई जाती है। तो कॉन्सियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। वेर एवर यू फाइंड कॉन्सियसनेस, यू विल फाइंड दैट सोल इज प्रेजेंट इन दैट प्लेस। ओके, इज दैट आंसर? इज दैट ओके हर्षल प्रभु? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड हो। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? लेट मी सी हु इज देयर। हाँ, ओम प्रभु, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, आपका चैट आया है, प्लीज इलेबोरेट ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान। ओके, आध्यात्मिक श्रीमद भागवत बताता है पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्य। आध्यात्मिक सत्य को तीन रूपों में समझा जाता है। कुछ लोग उसी सत्य को ब्रह्म ज्योति के समय रूप में समझते हैं, कुछ लोग उसको परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित होते हैं, कुछ लोग उसको भगवान के रूप में समझते हैं। ये तीनों तीनों का ग्रेडेशन है। ब्रह्म ज्योति से ऊंचा रियलाइजेशन होता है परमात्मा का, परमात्मा से ऊंचा रियलाइजेशन होता है भगवान का। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक बार एक एक गांव में नई नई ट्रेन का आवेश ट्रेन उस गांव में नई रोड लाइन आई, नया स्टेशन बना और ट्रेन वहां से पहली बार निकलने वाला था। तो एक फैमिली में किसी ने ट्रेन को देखा नहीं था, तो एक पिता अपने तीन बेटों को लेके जाता है कि अभी चलो देखते हैं ट्रेन कैसी होती है। तो पहला बेटा जब ट्रेन आती है सामने से, तो ट्रेन की रोशनी देख के भाग जाता है, सामने देखता है कि रोशनी आ रही है, इतना देख के भाग जाता है, घर में जाके मम्मी को बताता है कि, मम्मी पूछती है कि बेटा ट्रेन देखी कैसी है ट्रेन, तो बताता है एक रोशनी जैसी लगती है। अभी दो बेटे बचे रहते हैं, दूसरा बेटा जो है जब ट्रेन थोड़ा सा पास में आता है तो रोशनी के साथ साथ उसको कुछ कुछ आकृति दिखाई देती है कि कुछ डिब्बे टाइप के बने हुए हैं, इतना देख के वो चला जाता है। फिर वो जाके वो मम्मी से बताता है कि नहीं, उसमें रोशनी भी है और कुछ कुछ डिब्बे टाइप के भी हैं। अभी तीसरा वहीं पे रुका रहता है, जब ट्रेन आके स्टेशन पे खड़ी रहती है तो देखते हैं कि डिब्बे के अंदर लोग भी हैं, सोने की जगह है, एसी भी है, खाने की भी जगह है, पेंट्री कार है, सब कुछ देखता है। तो वो जाके बताता है कि ट्रेन में सब चीजें होती हैं, रोशनी भी होती है, डिब्बे भी होते हैं, पेंट्री कार होता है, सब कुछ होता है। तो इसी तरह से भगवान के तीन हैं। जब हम भगवान आध्यात्मिक सत्य को थोड़ा दूर से देखते हैं तो हम उसके निराकार ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। वो ब्रह्म ज्योति एक्चुअली भगवान के शरीर की रोशनी है, परंतु वो रोशनी इतनी तेज है कि उस रोशनी के पीछे खड़े भगवान नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आप दोपहर में सूरज को देखेंगे तो सूरज की तरफ देखना मुश्किल होता है, इतनी तेज रोशनी है सूरज की कि सूरज की आकृति तक नहीं देख पाते हैं। और भगवान के शरीर की रोशनी का मतलब होता है हजारों करोड़ों सूरज की रोशनी के बराबर होती है। तो उस ब्रह्म ज्योति के सामने आते ही व्यक्ति फिर अंधा जैसा हो जाता है, मतलब भगवान के रूप को नहीं देख पाता है। तो वो स्तर कहलाता है ट्रेन की लाइट को देखना। दूसरा स्तर जो है परमात्मा का स्तर, अपने हृदय में भगवान विष्णु को दर्शन करना। और तीसरा स्तर होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब भगवान हमारी आंखों के सामने होते हैं। तो ये आध्यात्मिक सत्य को जानने के तीन स्तर हैं, और तीनों स्तर में ग्रेडेशन है कि भगवान का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद ब्रह्म ज्योति। परंतु टेक्निकली तत्व के आधार पर देखेंगे तो दोनों में, तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग ब्रह्म ज्योति को फॉलो करते हैं ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, कुछ लोग परमात्मावादी जो अष्टांग योग में ध्यान की सफलता प्राप्त करते हैं वो परमात्मावादी कहलाते हैं, और जो भगवान के रूप को दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। ओके, अगर कुछ और है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रभु, अगर इफ इट इज ओके देन। ओके, तो कोई और प्रश्न है किसी को? अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो ये अनाउंसमेंट करने। अच्छा, एक प्रश्न आया है, रोहित कुमार। रोहित कुमार प्रभु, अनम्यूट करिए अपने आप को। रोहित प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
यस प्रभु जी, हरे कृष्ण।
यस प्रभु, बताइए। अच्छा, ओम प्रभु बोल रहे हैं, आई एम नॉट अलाउड टू अनम्यूट। कहाँ से सेटिंग होता है वो? ओके, अभी ट्राई करके देखिए, अभी कर पाएंगे। ओम प्रभु
यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे दंडवत प्रणाम।
है? अच्छा, रोहित प्रभु है। यस, ओम प्रभु और रोहित प्रभु दोनों लोगों को कुछ पूछना था। रोहित प्रभु, ओम प्रभु का पिछला प्रश्न था शायद, उनको उससे रिलेटेड पूछना होगा, उनसे बात कर लेता हूँ मैं।
ओके ओके,
यस ओम प्रभु बताइए।
यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है?
हाँ, आवाज आ रही
है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया ऑलरेडी ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ द गॉड रियलाइजेशन। या नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली मेरी वाइफ पूछना चाहती है, उमा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
Yes,
प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जब जो परमात्मा स्वरूप है कि उसमें हम हृदय के अंदर विष्णु भगवान का चतुर्भुज आकार की अनुभूति करते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति महसूस होती है, तो फिर इसमें और फिर भगवान की जो प्राप्ति है उसमें अंतर कितना है, कितनी डिग्री का अंतर हो
हाँ,
सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम भगवान को हृदय में देखते हैं तो हम उन पे ध्यान लगाते हैं, परंतु तो उसमें कोई एक्टिव सेवा नहीं होता है, क्योंकि भगवान सामने उपस्थित नहीं है हमारे सामने। जैसे मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, परंतु जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं है, उसकी सेवा नहीं करेंगे, तो पर्सनल संबंध बनाना कठिन होता है। तो केवल यही अंतर है कि भगवान हृदय में है परंतु हम उनकी एक्टिव सर्विस नहीं कर पाते हैं, परंतु जब भगवान सामने उपस्थित होते हैं तो हम भगवान के पैर भी दबा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, उनकी और भी सेवाएं कर सकते हैं। केवल यही अंतर है, लेवल ऑफ इंटीमेसी का अंतर है। बाकी वही भगवान हृदय के अंदर होते हैं और वही फिर सामने आते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं।
प्रभु जी, इसी इसी पॉइंट पे मेरा क्वेश्चन है फर्दर, कि जो परमात्मावादी हैं वो क्या फिर डीटी वर्शिप नहीं करते हैं क्या? डीटी वर्शिप, और वो मतलब साकार रूप को नहीं मानते हैं भगवान के
नहीं,
जो?
साकार रूप को मानते हैं परंतु ड्यूटी वर्शिप नहीं करते, क्योंकि वो अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन करके ध्यान में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कई कई साधु रहते हैं जो कई कई साल तक ध्यान में लगे रहते थे, अपनी अपने तपस अपनी
जी
तपस्या कुटी में बैठे, तो वो लोग परमात्मावादी होते हैं, उनको उसमें दिव्य सुख मिलता है भगवान के दर्शन में, भगवान के उसमें।
वैसे वैसे वो हर चीज मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान का जो गोलोका धाम, वो सब मानते हैं, बट वो केवल अपने हृदय में जो परमात्मा रूप है उसी को करते हैं ध्यान।
हाँ, उनको नॉलेज होता है परंतु चूंकि उनको उसमें दिव्य सुख मिलता है, उसके ऊपर वो लोग एक्टिव सर्विस में नहीं जाते हैं। जैसे आप देखें प्रहलाद जो थे, प्रहलाद भगवान का ध्यान करते थे और हनुमान जी भगवान की एक्टिव सेवा करते थे। तो एक ग्रंथ है बृहद भागवतम, उस ग्रंथ में प्रहलाद ने खुद ही बताया है कि हनुमान जी मुझसे ज्यादा बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान राम के लिए उन्होंने कितनी सारी सेवाएं की, जबकि मैंने तो केवल भगवान का ध्यान किया है बस। तो वो अंतर है,
ओके,
क्योंकि एक्टिव सेवा नहीं करते हैं वो उस अवस्था में।
यस
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय डाउट।
यस
यस, रोहित प्रभु, अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृपा से माला भी शुरू कर दिया मैंने काफी प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे ये कृष्ण की ओर बुक में लास्ट पेज में मैंने पढ़ा था कि जैसे वैदिक साहित्य में देवताओं की पूजा की स्तुति की गई है, तो अगर कृष्ण हमारे मतलब कृष्ण भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवान उनकी भी देवताओं की सेवा की स्तुति की, थोड़ा इस पे थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्या कि मतलब भगवान की सेवा
एग्जैक्टली क्या 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 जानना चाहते हैं प्रभु जी?
मतलब देवताओं की पूजा की जो स्तुति की गई है तो उसे मतलब क्या मतलब कहेंगे?
देवताओं की पूजा की जो संस्तुति की गई है उसका क्या मतलब है? हाँ, उसमें एक्चुअली जैसे एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। आप कहाँ पे रहते हैं रोहित? तू भारत में कहाँ पे रहते हैं?
भारत में फिर अभी मैं सिवान बिहार
का। ओके, एनीवे भारत में जो भी रहता है नरेंद्र मोदी को तो जानता है, भारत के फेमस प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे मान लो अगर आप किसी मुख्यमंत्री से मिले, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश यादव ना
जी?
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगर कोई उनसे जाके बोले कि नीतीश कुमार आप तो नरेंद्र मोदी से भी बड़े बन गए, या आप नरेंद्र मोदी बन गए, तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से कम होती है। तो इसी तरह से देवता जो है भगवान के दास है, जैसे हम भगवान के दास है वैसे देवता भी भगवान के दास है। तो देवताओं के पास अगर कोई जाके बोले कि देखो आप ही तो सबसे बड़े भगवान हो, तो देवताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, और शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा है। तो उस प्रकार की पूजा शास्त्रों में गलत मानी जाती है, जब हम देवता को भगवान समझ के पूजा करते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि देवता भी भगवान के भक्त हैं, उनके पास जाके भगवान की भक्ति मांगते हैं, तब फिर देवताओं की पूजा को वैलिड माना जा वैलिड मतलब फिर उस तरीके की पूजा संस्तुति की जाती है कि जो जिस अवस्था में है उसकी उसी अवस्था में पूजा करें, उसको गलत तरीके से बोल के नहीं करें। जैसे कोई अगर हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी आप तो राम के बराबर हैं, तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान अपने आप को राम का दास मानते हैं। तो हनुमान जी को भगवान राम के दास के जैसे पूजा करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे, बजाय इसके कि हनुमान जी को भगवान मान के पूजा करेंगे। तो इसी तरह से देवताओं की पूजा जब उनको भगवान के भक्त मान के की जाती है, इस सिचुएशन से की जाती है, तब वो संस्तुति वैसे वेदों में की जाती है। उस तरीके की पूजा में भी देवताओं से हमें ये मांगना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, तब वो अलाउड होती है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
यस प्रभु जी, आ गया, थैंक यू वेरी मच।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
नो प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
ललित प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस प्रभु।
प्रभु जी आपने एक एग्जांपल दिया ब्रह्म परमात्मा और भगवान का, तो परमात्मा और भगवान वाला तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, और निराकार ब्रह्म का उसका एग्जांपल थोड़ा, कौन लोग समाज में होते हैं वो लोग, उन लोगों का पंथ क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
निराकार को मैंने वो जो एग्जांपल दिया था ना, सूरज का एग्जांपल। तो जैसे सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि उससे सूरज का आकार हमें समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से हेरा एक ईशोपनिषद में 15 नंबर श्लोक में आता है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि आपका दिव्य रूप जो है वो हमें समझ में नहीं आता है। हिरण्यमयेन पत्रेण सत्यस्पिहितं मुखम्, इस प्रकार से आता है, तत्त्वं पुषनपावबिन्दुं सत्यधर्माय दृश्यते। तो वेदव्यास जो है वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके शरीर की रोशनी इतनी तेज है कि उस रोशनी के कारण हम आपके शरीर को नहीं देख पा रहे। तो जो ब्रह्म ज्योति जो है वो एक्चुअली भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी है, वो आध्यात्मिक रोशनी है, और वही रोशनी पूरे आध्यात्मिक संसार को प्रकाशित करती है। जैसे आपने सुना होगा कभी ब्रह्मलीन संत, कोई साधु के लिए लिखा रहता है ब्रह्मलीन है वो, तो ब्रह्मलीन मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में स्थित है। तो वो ब्रह्म ज्योति पूरे आध्यात्मिक संसार में स्थापित है, परंतु वो निराकार जैसी दिखती है, क्योंकि वो ज्योति है, उसका अपना आकार नहीं है, वो भगवान से निकल रही है, परंतु भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर की रोशनी है। और जो उससे आगे बढ़ के भगवान के रूप को देख पाता है वो भगवान की भक्ति कर पाता है, इसलिए भक्तों को ब्रह्मज्ञानी लोगों से ऊपर माना जाता है, परमात्मावादियों को उनसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर भगवान का दिव्य रूप उन्होंने देखा नहीं है, तो उनको उसका अनुभव नहीं होता। ओके,
कौन पंथ ऐसे हैं जो जो कि इंडिया में देखने में आता है, ऐसे कौन कौन पंथ हैं?
एक्चुअली बहुत सारे हैं, ऐसे तो नाम बताना तो बहुत मुश्किल है, पर जहाँ पे भी आप देखते हैं ब्रह्मलीन, जहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मलीन लिखा हुआ है या ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है, वो इस प्रकार के पंथ में आते हैं।
जैसे जैसे ब्रह्म कुमारी वो भी उसी तरह के हैं क्या?
ब्रह्म कुमारी का फिलॉसफी तो और भी अलग है, वो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि वैदिक ब्रह्म कुमारी की फिलॉसफी में थोड़े और भी फॉल्ट्स हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है। यानी वो अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसका हम डिस्कस करेंगे तो आधा घंटा और निकल जाएगा, क्योंकि
अच्छा
उनका
अच्छा
अलग फिलॉसफी है। परंतु ब्रह्मलीन अगर आप देखें तो उसमें काउंट हो सकता है, वो लोग ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। अगर आपको
धन्यवाद
उसको
सर।
जानना हो ना प्रभु, तो आप मेरा नंबर, आपके पास होगा इस ग्रुप में भी मैं हूँ, मेरा नंबर लिख सकते हैं, नाइन
जी
वन
जी
फाइव सेवन एट 10 9 डबल 8,
9 9 1
5 7 8
जी
10 9 डबल 8।
9 8
तो फोन पे हम बात कर सकते हैं उस
जी जी
वो,
जी 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 जी
ठीक है प्रभु?
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
ओके, तो कुछ कुछ अनाउंसमेंट था, अभी आप लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्म करना था इस कोर्स के द्वारा, कि अभी तक हम, बहुत अच्छी बात है कि श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र जो हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने भी प्रभुपाद की पुस्तकें ली हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हम 450 से ज्यादा पुस्तकें पार्टिसिपेंट्स को भेज चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भारत में अलग अलग स्टेट में इस प्रकार से हम शास्त्रों को भेज रहे हैं। हमारा हमारा टारगेट इस प्रकार से होना चाहिए, आप सभी भी इस तरह से टारगेट बनाइए कि ये शास्त्र पढ़ के आपको फायदा हो रहा है, तो ये पुस्तकें आप अपने पहचान वालों को भी देंगे, आप बताएंगे अपनी ये पुस्तकें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे। तो 450 से ज्यादा पुस्तकें अभी तक हम पहुंचा चुके हैं, और 150 से ज्यादा पार्टिसिपेंट अभी इस कोर्स में है जो कि भाग ले रहे हैं, क्विजेज में आते हैं। 90 से ज्यादा लोग रेगुलर क्विज भी भर रहे हैं, हर दिन क्विज भेजते भी हैं, और ये पार्टिसिपेंट्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों के रिस्पांस के कारण हम चल रहा है लंबा। पहले मैंने सोचा था पता नहीं किस तरह से ये आगे जाएगा कोर्स, पर आप लोगों के इंटरेस्ट के कारण इसको चल रहा है। और जो हम सेशन करते हैं उसके इंग्लिश नोट्स भी हम लोग बना रहे हैं, तो उसको हम शेयर करने का प्रयास करेंगे ग्रुप के अंदर। जो ग्रुप बना है उसमें नोट्स, सेशन के नोट्स हम इवेंचुअली डालते रहेंगे, जिससे आपको समझ में आया कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसमें कंटिन्यू करने के लिए। मैचलेस गिफ्ट पुस्तक जो अगला चालू हो रहा है उसको पढ़िएगा, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, या तो उस पुस्तक के बीच में या पुस्तक खत्म होने के बाद। ओके, तो एंड करते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप में आप लोगों को मिलता रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता यथा रूप की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।